आगे सबक देखिए भाई। वलम्मा तम الحد بما ذكره جمعا ومنعا أردفه لزيادة التوضيح بقوله يتوسط بينه أي بين ذلك التابع وبين مطبوعه أحد الحروف العشرة وسيأتي تفصيلها في قسم الحروف إن شاء الله تعالى مثل قام زيد وعمر। भाई गुज़श्ता सबक में हमने आतफ के बारे में पढ़ना शुरू किया था, यानी मातूफ बा हर्फ भाई, और आपने पढ़ा कि तवाबे कुल पांच हैं, सिफत है, आतफ है और बदल है, ताकीद है और अतफे बयान है। तो साहिब काफिया ने फरमाया अल अत्फु ताबिउम मकसूदुम बिन निस्बती मा मतबूईही, कि आतफ जो है ऐसा ताबिया है जो मकसूद होता है उस निस्बत के जरिए जो कलाम में होती है, मा मतबूईही साथ अपने मतबूअ के, यानी मतबूअ भी मकसूद होता है ताबिया के साथ साथ भाई। तो साहिब काफिया ने अल अत्फ फरमाया, साहिब जामी ने आगे बतलाया या अनिल मातूफ बिल हर्फी, कि अतफ से मुराद मातूफ बिल हर्फ है। वजह यह कि अतफ दो हैं, दो ताबिया हैं, एक अतफ बिल हर्फ है यानी मातूफ बिल हर्फ है और दूसरा अतफे बयान है, तो वो भी अतफ है, अलबत्ता उसके साथ बयान की कैद होती है, तो इसके साथ कोई कैद नहीं, ये मुतलक है। और जब भी इल्म नहव के अंदर मुतलकन अतफ जिक्र हो तो उससे मातूफ बिल हर्फ मुराद होता है, हत्फ बयान मुराद नहीं होता। तो इसलिए यहां भी बतलाया कि अतफ से मुराद मातूफ बिल हर्फ है, और फिर बतलाया कि मातूफ बिल हर्फ ऐसा ताबिया है कि वो मकसूद होता है उस निस्बत के जरिए जो कलाम में वाक़ होती है, मा मतबू ही साथ अपने मतबू के। मसलन मैं कहता हूं जा अनी जैदुन व अमरुन, मेरे पास जैद और अमर आए, तो जैद हुआ मातूफुन आले और व अमरुन, ये अमर जो है ये है मातूफ बिल हर्फ भाई, यानी इसका अतफ किया जा रहा है हर्फ वो के जरिए जैद पर। तो साहिब काफिया ने क्या तारीफ की कि आतफ ऐसा ताबिया है कि वो मकसूद होता है निस्बत के जरिए। मैंने बतलाया था कि निस्बत दो लफ्जों के दरमियान जोड़ का नाम है, रबत का नाम है, इत्तेसाल का नाम है, तवज्जो है। मसलन मैं कहता हूं जैदुन काइमुन, ये कायमुन का इस्नाद किसकी तरफ है, जैद की तरफ है। कायमुन का जैसे पहले इस्नाद किसकी तरफ होगा, हुआ की तरफ, और फिर ये शिबे जुमला होकर इसका इस्नाद किसकी तरफ है, जैद की तरफ। तो देखो जैदुन और कायमुन के दरमियान एक जोड़ है, एक रबत है, उस रबत की वजह से आप कहते हैं जैद मुस्नद इले है और कायमुन मुस्नद है। यह दूसरी मिसाल ले लें जुमला फेलिया की, जाराबा जैदुन, जाराबा फेल है और जैदुन उसका फाइल, यह जाराबा का इस्नाद हो रहा है जैद की तरफ, तो जाराबा और जैद के दरमियान इत्तेसाल है, जोड़ है, निस्बत है। तो ये जो निस्बत है ये दो लफ्जों के दरमियान जोड़ और रबत और इत्तेसाल का नाम है, ये एक मानवी चीज है, ये क्या है, एक मानवी चीज है, ये लफ्ज का नाम नहीं। तो तारीफ में क्या था कि आतफ ऐसा ताबिया है कि वो मकसूद होता है निस्बत के जरिए। मैंने बतलाया निस्बत के जरिए ताबिया मकसूद नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि निस्बत नाम है माना का और ताबिया वो तो लफ्ज का नाम है। जानी जैदुन व अमरुन, ये अमर क्या है, ताबिया है और ये लफ्ज है भाई, तो ताबिया किसका नाम, लफ्ज का, और निस्बत किसका नाम, एक माना और इत्तेसाल और जोड़ का नाम है, वो एक मानवी चीज है। तो निस्बत के जरिए लफ्ज मुराद नहीं हो सकता, निस्बत के जरिए निस्बत ही मुराद हो सकती है। जैसे मैंने बतलाया था, मैं कहता हूं जा अनिल इंसान, मेरे पास एक इंसान आया था, कोई खास इंसान का इरादा मैं करता हूं, मसलन जैद का, तो देखो इंसान अल इंसान के जरिए मैं जैद का इरादा भी कर सकता हूं, मैं अमर का इरादा भी कर सकता हूं, मैं बकर का इरादा भी कर सकता हूं, क्योंकि ये सब इंसान हैं। लेकिन अल इंसान के जरिए मैं गाय या बकरी का इरादा नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसान के अफराद नहीं, इंसान उन पर सादिक ही नहीं आता। तो यहां पर भी निस्बत आ रही है कलाम के अंदर, और साहिब काफिया क्या फरमा रहे हैं कि अतफ ऐसा ताबिया है जो निस्बत के जरिए मकसूद होता है। तो निस्बत के जरिए ताबिया तो मकसूद नहीं हो सकता क्योंकि निस्बत एक मानवी चीज है और ताबिया तो लफ्ज का नाम है। निस्बत के जरिए निस्बत का इरादा हो सकता है, इंसान के जरिए इंसान का इरादा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो मालूम हुआ यहां ताबिया वो मकसूद नहीं, ताबिया की निस्बत मुराद है। अलातफु ताबिया मकसूद उन बिन निस्बती के मातूफ जो है वो ऐसा ताबिया है कि वो निस्बत के जरिए मकसूद होता है, यानी ताबिया नहीं मकसूद, ताबिया की निस्बत मकसूद है। अतफ ऐसा ताबिया है कि उसकी निस्बत मकसूद होती है, किसके जरिए? वो जो कलाम में निस्बत है, कलाम में जो निस्बत है उसके जरिए ताबिया की निस्बत मकसूद होती है। तो इतना तय हो गया कि बिन निस्बत कलाम के अंदर जो निस्बत है उसके जरिए क्या मकसूद है, ताबे नहीं मकसूद बल्कि ताबे की निस्बत मकसूद है। और ताबे की निस्बत दो तरह की हो सकती है कि कभी इसकी तरफ किसी चीज की निस्बत होगी, कभी इस ताबे की निस्बत किसी चीज की तरफ होगी। जैसे जा अनी जैदुन व अमरुन, ये अमरुन देखो ताबे है और इसकी तरफ जा अफेल की निस्बत हो रही है जैद के वास्ते से। तो देखो यहां ताबिया की निस्बत जा की तरफ नहीं हो रही क्योंकि ताबिया वो तो कोई फेल या सिफत का सिगा नहीं है। तो हां अलबत्ता जा फेल की निस्बत हो रही है जैद और अमर की तरफ, यानी ताबिया की तरफ भी, ताबिया की तरफ भी निस्बत। ये है ताबिया की निस्बत और इसमें ताबिया की तरफ किसी चीज की निस्बत हो रही है। और कभी ताबिया की निस्बत होगी किसी चीज की तरफ, जैसे मसल में कहता हूं जैदुन काइमुन व जारिबुन, जैदुन काइमुन व जारिबुन। तो देखो ये काइमुन ये खबर है जैद के लिए, जैद मुब्तदा है और काइमुन उसकी खबर, और इसी खबर पर आतफ है जारिबुन का। तो जारिबुन भी क्या है, गोया जैद के लिए खबर है, जारिबुन भी क्या है जैद के लिए खबर है, और ये ताबिया है क्योंकि ये इसका आतफ हो रहा है काइमुन पर और काइमुन का इस्नाद हो रहा है जैद की तरफ। इसी तरह ये जारिबुन का भी इस्नाद है किसकी तरफ, जैद की तरफ यानी मुब्तदा की तरफ। तो यहां देखो ये जारिबुन ऐसा ताबिया है कि इसकी निस्बत मकसूद है, और कौन सी निस्बत, इसकी तरफ किसी चीज की निस्बत है या इस जारिबुन की निस्बत की जा रही है जैद की तरफ, जारिबुन की निस्बत। तो यहां देखो ताबिया की निस्बत की जा रही है। तो आतफ जो है ऐसा ताबिया है कि उसकी जो निस्बत है वो मकसूद होती है उस निस्बत के जरिए जो कलाम में वाकई है। और ताबिया की निस्बत दो तरह हो सकती है, कभी इसकी तरफ किसी चीज की निस्बत होगी और कभी इस ताबिया की निस्बत होगी किसी चीज की तरफ। तो बहरहाल जो भी निस्बत हो उस ताबिया की वह मकसूद होती है, और मा मतबू ही साथ किसके, अपने मतबू के। मसलन देखो जानी जैदुन व अमरुन, जैदुन ये मातूफुन अलैह है और अमरुन ये मातूफ है। तो कलाम के अंदर जो मजीअत वाली निस्बत आ रही है इस मजीअत के जरिए ताबिया की तरफ जो मजीअत की निस्बत हो रही है वो भी मकसूद है, और मा मतबू ही साथ अपने मतबू के, तो मतबू की तरफ जो मजीअत की निस्बत हो रही है वो भी मकसूद है। मालूम हुआ सिर्फ जैद का आना यहां मकसूद नहीं है बल्कि जैद और अमर दोनों का आना, दोनों की मजीअत जो है वो बतलाना मकसूद है। और जब ये कैदें लगाई तो इससे बाकी तवाबिया निकल गए, इसलिए क्योंकि बाकी तवाबिया के अंदर कभी मतबू मकसूद होता है और कभी ताबिया मकसूद होता है, दोनों नहीं मकसूद होते। यहां ताबिया और मतबू दोनों मकसूद हैं क्योंकि तारीफ क्या की, आतफ ऐसा ताबिया है कि उसकी निस्बत मकसूद होती है उस निस्बत के जरिए जो कलाम में वाकई है, और इसी साथ किसके, अपने मतबू के, यानी मतबू की निस्बत भी मकसूद है। दोनों मकसूद हैं, ताबिया की निस्बत भी और मतबू की निस्बत भी, जबकि बाकी तवाबिया ऐसे नहीं। देखो मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत में मौसूफ मकसूद होता है, सिफत सिर्फ उसकी वजाहत के लिए आती है या उसमें तख्सीस पैदा करने के लिए आती है, और इसी तरह मुअक्कद ताकीद में मुअक्कद असल होता है, ताकीद सिर्फ उसी को पक्का करती है या उसमें उमूम का माना का फायदा देती है, और इसी तरह अतफ बयान जो है उसमें असल मातूफुन अलैह मकसूद होता है, अतफ बयान सिर्फ उसकी वजाहत के लिए आता है। तो देखो सिफत ताकीद और अतफ बयान इनके अंदर सिर्फ मतबू मकसूद है, तबे यानी सिफत ताकीद या थे बयान मकसूद नहीं। और रह गया बदल, तो बदल के अंदर खुद बदल यानी ताबे मकसूद होता है, जो पहले आया मुबदल मीन हो वो मकसूद नहीं, उसको बतौर तमहीद के जिक्र किया जाता है। मैंने बताया जैसे आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो पहले तमहीद बांधते हैं, गोया तैयारी करते हैं अपनी बात बयान करने के लिए, तो वो शुरू में चंद बातें जो आप जिक्र करते हैं वो है तमहीद, और फिर जब अपने मकसद की बात करते हैं तो वो असल हुआ। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी मुबदल मिनहू और बदल, मुबदल मिनहू है मतबू, वो पहले आया है लेकिन उसको सिर्फ तमहीद के तौर पर जिक्र किया गया है, वो मकसूद नहीं है, मकसूद आगे आने वाला बदल यानी ताबिया है। जानी जैदुन अखू का, जैदुन क्या है मुबदल मिनहू और अखू का उससे बदल है, तो यहां मुतकल्लिम अखू का कहना चाहता था, जैद को उसने साथ वैसे ही जिक्र कर दिया क्योंकि मुखातब का भाई है और उसका नाम जैद है। अब वो सिर्फ इतना कह दे जा अनी अखू का, मेरे पास आपका भाई आया था, तो भी एक बात है। वो कह दे जा अनी जैदुन, मेरे पास जैद आया था, तो भी वही बात है क्योंकि जो जैद है वही इसका भाई है मुखातब का। तो वो दोनों लफ्ज लाता है जा अनी जैदुन अखू का, तो यहां जैद मुबदल मिनहू और अखू का उससे बदल, और असल मकसूद कौन होता है बदल, तो यहां अखू का कहना मकसूद था, बदल को साथ वैसे ही जिक्र कर दिया गया। तो मुबदल मिनहू और बदल में से कौन मकसूद, ताबिया मकसूद है, मतबू मकसूद नहीं है। तो देखो जब कहा कि आतफ जो है ऐसा ताबिया है कि उसकी निस्बत मकसूद होती है, उसकी निस्बत मकसूद होती है, तो सिफत भी निकल गई और ताकीद भी निकल गया और अथवे बयान भी निकल गया क्योंकि वहां ताबिया मकसूद नहीं। और फिर जब आगे कहा मा मतबू ही, साथ मतबू भी मकसूद होता है, तो बदल भी निकल गया क्योंकि बदल के अंदर मतबू मकसूद नहीं होता। बात समझ में आ गई। इस तारीफ पर फिर इश्काल हुआ था। इश्काल ये कि आपने क्या कहा ताबे और मतबू दोनों मकसूद होते हैं, कहते हैं इसके जरिए तो छह हरूफ आतफ के जरिए जो मातूफ है वो निकल गया, वो आपकी तारीफ में दाखिल नहीं। और वो हरूफ, वो छह हरूफ ला है, बल है, लाकिन है, अम है, इम्मा है और औ है। इनके जरिए एक मकसूद होता है, दोनों नहीं। जैसे ला जानी सईदुन ला अमरुन, जानी जैदुन ला अमरुन, मेरे पास जैद आया, अमर नहीं, ये ला हर्फ आतफ है, ये अमर का आतफ हो रहा है जैद पर, तवज्जो है, लेकिन ये ला नफी का फायदा दे रहा है। जैसे हुरूफ आतफ में फा किस चीज का फायदा देती है, तरतीब का फायदा देती है। सुम्मा किस चीज का फायदा देता है, तरतीब के साथ तराखी का भी फायदा देता है, तवज्जो है। तो ये ला नफी का फायदा दे रहा है। और जा अनी जैदुन, मेरे पास जैद आया, ला अमरुन, अमर नहीं, तो यहां सिर्फ देखो जैद मकसूद है, मजीद की निस्बत उसकी तरफ हो रही है, अमर की तरफ नहीं हो रही, ला ने नफी कर दी उसकी जी। तो देखो दोनों में से एक मकसूद है। और आपने तो कहा था ताबे और मतबू दोनों मकसूद होने चाहिए, यहां तो एक मकसूद है, मालूम है जैद आया है, अमर नहीं आया। इसी तरह बल में देख लो, जा अनी जैदुन बल अमरुन, आप किसी को कहना चाहते थे अमर आया है, क्या आया है, लेकिन जुबान पर गलती से जैद आ गया, आपने कहा जा अनी जैदुन, फिर एकदम ख्याल आया ओहो जैद तो नहीं आया, आप फौरन कहते बल अमरुन, बल्कि अमर आया है। तो गोया ये कलाम इस माना में हुआ, आपने कहा है जा अनी अमरुन, मेरे पास अमर आया है, और जो पहले आया था बल से पहले, पहले जिसकी तरफ इस्नाद हुआ था जानी जैदुन बल अमरुन, तो वो जैद मस्कूत अनहू के हुक्म में है, वो मस्कूत अनहू है, यानी उसके बारे में खामोशी है, उसकी नफी नहीं है कि वो नहीं आया, हो सकता है आया हो सकता है ना आया हो, वो मस्कूत अनहू है। तो यहां पर भी देखो बाद वाला ताबिया मकसूद है जानी जैदुन बल अमरुन में। इसी तरह लाकिन है, लाकिन में मैंने बताया था लाकिन दो कलामों के बीच में आता है, लेकिन वो दोनों कलाम एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, एक मुस्बत होगा तो दूसरा मनफी होगा, अगर पहला मुस्बत है दूसरा मनफी होगा, और अगर पहला मनफी है तो दूसरा मुस्बत होगा। मसलन मैं कहता हूं जा अनी जैदुन लाकिन अमरुन लम यजी, जा अनी जैदुन लाकिन अमरुन लम यजी, तो देखो यहां सिर्फ जैद की मजीअत मकसूद है, अमर की मजीअत मकसूद नहीं है, तो देखो यहां भी एक ही मकसूद हुआ। इसी तरह औ है भाई, औ भी दो अहदुल अमरैन के लिए आता है, जा अनी जैदुन औ अमरुन, मेरे पास जैद या अमर आया, दोनों आए या एक आया, एक आया, लेकिन मुतय्यन नहीं, ला अल तायीन कोई एक मुराद है, आप बतलाना नहीं चाहते दूसरे को कौन सवाल आया, तो आप इसलिए औ हर्फ आतफ ले आए। तो यहां पर भी देखो एक मकसूद है, या इसी तरह इम्मा है, जानी इम्मा जैदुन व इम्मा अमरुन, इसका भी वही माना, मेरे पास या जैद आया है या अमर, एक मकसूद है। और या इसी तरह आम है, अफिदारी जैदुन आम अमरुन, क्या घर में जैद है या अमर, यहां भी एक है दोनों में से, घर के अंदर उसकी तायीन का आप सवाल कर रहे हैं, तो मकसूद दोनों नहीं है बल्कि दोनों में से एक मकसूद है, उसके बारे में सवाल हो रहा है कि कौन सा वाला है इन दोनों में से घर के अंदर। तो ये छह हरूफ, इनके जरिए जो मातूफ होगा वो तो निकल गया, आप मातूफ की तारीफ कर रहे हैं ना, मातूफ बिल हर्फ की, और आपने क्या कहा मातूफ बिल हर्फ वो भी मकसूद होगा और उसका मतबू भी मकसूद होगा, और यहां तो दोनों मकसूद नहीं, बाज में ताबिया मकसूद होता है बाज में मतबू मकसूद होता है। तो उसका जवाब दिया था साहिब जामी ने कि बाज उलमा ने फिर इसका यह जवाब दिया कि भाई दोनों के मकसूद होने का यह मतलब नहीं है कि दोनों ही इकट्ठे मकसूद हों, कि दोनों इकट्ठे मकसूद हों, बल्कि ताबिया के मकसूद होने का मतलब यह है कि ताबिया माकबल की फरा नहीं होनी चाहिए, मुस्तकिलन मकसूद हो। जैसे सिफत वो फरा है मौसूफ की, सिफत कोई मुस्तकिल अलग मकसूद नहीं है, जानी जैदुनिल आलिमो मकसूद जैद है, सिफत सिर्फ उसकी वजाहत कर रही है कि वो जैद आलिम है, यानी गैर आलिम के इहतमाल को खत्म कर रही है। तो सिफत किस लिए जिक्र होती है, बतौर फरा के, असल मौसूफ होता है, इसी तरह ताकीद बतौर फरा के जिक्र होता है, असल मुअक्कद होता है, जा अनिल कौम कुल्लुहुम, मेरे पास वो लोग आए कुल्लुहुम सारे के सारे, यहां अलकौम मकसूद है, कुल्लुहुम ने सिर्फ उसी के अंदर ताकीद पैदा की, उमूम पैदा कर दिया कि सारे अफराद आए हैं। तो यहां देखो ताकीद जो है वो फरा है, असल क्या है अलकौम। इसी तरह आठवें बयान जानी अबू हफ्स इन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पास अबू हफ्स यानी उमर तशरीफ लाए, तो यहां अबू हफ्स मकसूद है, उमर को सिर्फ वजाहत के लिए जिक्र किया गया है क्योंकि अबू हफ्स हजरत उमर की कुनियत ज्यादा मशहूर नहीं थी तो पता नहीं चलता कि अबू हफ्स से कौन मुराद हैं, तो आगे उमर ने आकर वजाहत कर दी, तो लफ्ज उमर ने सिर्फ वजाहत की है, मकसूद अबू हफ्स ही है। तो इन तीनों के अंदर देखो जो ताबिया है उसको सिर्फ फरा के तौर पर जिक्र किया गया है, वो मकसूद नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा ताबिया मकसूद होना चाहिए और मतबू भी, आतफ की तारीफ क्या की ताबे भी मकसूद हो और मतबू भी मकसूद, तो ताबे के मकसूद होने का मतलब यह है कि वो बतौर फरा के जिक्र नहीं होना चाहिए, वो मुस्तकिलन जिक्र हो भाई, वो मुस्तकिल हो, गैर मुस्तकिल न हो, फरा की तरह न हो भाई। और मतबू के मकसूद होने का यह माना है कि मतबू बतौर तमहीद के जिक्र ना हो, बदल और मुबदल मिनहू में मतबू कौन है मुबदल मिनहू और वो बतौर तमहीद के जिक्र है, तो कहते हैं कि मतबू भी मकसूद हो तारीफ में आया जी। तो मतबू के मकसूद होने का क्या माना कि मतबू जो है वो बतौर तमहीद के जिक्र ना हो, वो मुस्तकिलन मकसूद होना चाहिए। तो जब यह माना जिक्र कर दिया आप इन छह हुरूफ के जरिए जो मातूफ होता है और जो मातूफुन अलैह होता है, यकीनन वो ऐसे नहीं हैं, ये जो छह हुरूफ हैं भाई ला बल लाकिन अम इम्मा और औ, इनके जरिए जो मातूफ है उनमें से जो मतबू होता है वो मुस्तकिलन जिक्र है, वो बतौर तमहीद के नहीं जिक्र होता। जानी जैदुन ला अमरुन, क्या ये जैद जो है ये अमर के लिए तमहीद है, नहीं, जैद अलग जात है, अमर अलग जात है, यहां जैद अमर के लिए तमहीद नहीं है। और फिर ये जो अमर ताबिया है इसको बतौर फरा के नहीं जिक्र किया गया, ये बतौर फरा के नहीं है अमर, बल्कि ये मुस्तकिल है, ये अलग जात है, इसको अलग जिक्र किया गया है। बात समझ में आ गए, तो मालूम हुआ ताबिया के मकसूद होने का क्या माना कि वो मुस्तकिल हो, मतबू की फरा न हो, और मतबू के मकसूद होने का क्या माना कि मतबू वो भी मुस्तकिल हो, वो बतौर तमहीद के जिक्र न हो, और इन छह हरूफ के जरिए जो मातूफुन आले और मातूफ आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लिहाजा वो तारीफ में दाखिल हो गए। तो तारीफ का ये माना नहीं कि ताबे और मतबू दोनों इकट्ठे एक वक्त में मकसूद हों, बल्कि ताबे के मकसूद होने का मतलब यह है वो फरा नहीं होना चाहिए बस, और मतबू के मकसूद होने का यह मतलब है कि वह बतौर तमहीद के नहीं होना चाहिए, चाहे दोनों इकट्ठे मकसूद हों या दोनों में से कोई एक मकसूद हो, लेकिन दोनों में से कोई एक भी गैर मुस्तकिल नहीं होना चाहिए, हर एक को मुस्तकिल होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं वलम मातम मल हद बिमा ज़करहु जमाउ वमन अन अरदफहु लिज़ियादति तौज़ीह बिक़ौलिही यतवस्सतु बैनहु ऐ बैन ज़ालिका ताबिअ व बैन मतबूइहि अहदुल हुरूफ अल-10 व सयाती। यह मतन हमने पढ़ लिया था, फिर देख लें एक दफा मतन। कहते हैं यतवस्सतु बैनहु व बैन मतबूइहि अहदुल हुरूफ अल-10, उस ताबिअ और उसके मतबू के दरमियान हुरूफ अशरा में से कोई एक हर्फ आना चाहिए। वो जो हुरूफ आतिफा है भाई, वाव है, फा है, सुम्मा है, हत्ता है, और ला है, बल है, लाकिन है, आम है, इम्मा है, और औ है। तो इन दस में से कोई एक हर्फ आना चाहिए। तो कहते हैं ये तवस्सतु बैनहु व बैन मतबू ही, बीच में आना चाहिए ताबे और मतबू के, अहदुल हुरूफ अशरती, दस हुरूफ अशरा में से कोई एक, व सयाती, और आन करीब इनकी तफसील आ जाएगी। मिसलु काम ज़ैदुन व अमरुन, जैसे काम ज़ैदुन व अमरुन। मैंने बतलाया था कि यह अतफ बिल हर्फ की शर्त है भाई। अतफ बिल हर्फ की क्या शर्त है कि दरमियान में कोई हर्फ अतफ जरूर होना चाहिए, ये जो दस हरूफ आतिफा हैं भाई, फिर ही ये अतफ कहलाएगा, यानी मातूफ बिल हर्फ। वैसे ये मातूफ बिल हर्फ नहीं कहलाएगा, तो इन हरूफ में से किसी एक का होना शर्त है। जैसे मिसाल भी जिक्र कर दी मतन के अंदर, मिसलो काम ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद और अमर खड़े हुए। इसके अंदर देखो जैद और अमर खड़े हुए, जैद और अमर के दरमियान वह हर्फ अतफ है भाई। जैद है मातूफुन अलै, जो पहले आए वो क्या है, मातूफुन अलै, और अमर क्या है, मातूफ, इसका अतफ किया गया है। तो ये जो कलाम के अंदर निस्बत है, कौन सी निस्बत है, कियाम वाली, इस निस्बत के जरिए वो जो कियाम की निस्बत अमर की तरफ हो रही है वो भी मकसूद है, और वो जो कियाम की निस्बत हो रही है जैद की तरफ वो भी मकसूद है, और नीज दोनों के दरमियान हर्फ अतफ भी आ गया, शर्त भी पूरी हो गई। तो जो है फिर जरा इस पे तारीफ लागू करें। अल अत्फु ताबिउन मकसूदुन बिन निस्बती, मातूफ बिल हर्फ ऐसा ताबिअ है जो मकसूद बिन निस्बत होता है, यानी इसकी निस्बत मकसूद होती है, और मा मतबू ही, साथ उसके मतबू के, तो ताबे और मतबू दोनों की तरफ जो कियाम की निस्बत हो रही है वो दोनों मकसूद हैं। और नीज नीज कहा यह तवस्सतु बैनहु व बैन मतबू ही अहदुल हुरूफ अशरती, इन दोनों के बीच हुरूफ अशरा में से कोई एक हर्फ आना चाहिए, और वो यहां वो मौजूद है। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए। कहते हैं वलम मातम मल हद बिमा ज़करहु जमऊ अमन अन, वलम्मा तम्मल हद, और जब हद पूरी हो गई, बिमा ज़करहु उस चीज के साथ जो जिक्र किया मुसन्निफ ने, कौन सी तारीख जिक्र की मातिन, मातिन ने, अल अत्फु ताबिउन मकसूदुन बिन निस्बती मा मतबूइही, तवज्जो है ये मा मतबूइही तक, यहां तक तारीफ मुकम्मल हुई जमाउ व मनअन, जमा और मना के एतबार से, यानी जामिअ भी है और मानिअ भी है। इसमें मातूफ बिल हर्फ के सारे अफराद दाखिल हो गए और बाकी सारे तवाबे निकल गए, तो ये तारीफ जामिअ भी हुई और मानिअ भी हुई। लेकिन फिर आगे अरदफहु, अरदफा युरदिफू के माने होते हैं पीछे लाना, एक चीज को दूसरी चीज के पीछे लाना, अरदफहु, तो इस तारीफ के पीछे लाए मुसन्निफ, यानी साहिब काफिया, क्या लाए पीछे, ये जो आगे आ रहा है तवस्सतु बैनहु व बैन मतबूइही अहदुल हुरूफ अशरती, तारीफ के बाद ये लेकर आए साहिब काफिया, क्यों, लिज़ियादति तौज़ीही, ज्यादा वजाहत करने के लिए, ज्यादा वजाहत करने के लिए। बात समझ में आ गई, क्या माना हुआ, साहिब जामी ने क्या बतलाया, इधर देखिए कि साहिब काफिया ने फरमाया कि अल अत्फु ताबिउन मकसूदुन बिन निस्बती मा मतबूइही, यहां तक तारीफ जामिअ माने होकर मुकम्मल हो गई, यानी यहां तक जो तारीफ है वो जामिअ माने है, इसमें कोई गैर दाखिल नहीं और अपना कोई फर्द इसका खारिज नहीं है, तो ये तारीफ जामिअ माने है। लेकिन फिर आगे मजीद ज्यादा वजाहत के लिए साहिब काफिया ने फरमाया ये तवस्सतु बैनहु व बैन मतबूइही अहदुल हुरूफ अशरती, कि उस ताबे और मतबू के बीच हुरूफ अशरा में से कोई एक आना चाहिए। ये ज्यादा वजाहत के लिए लाए हैं। तवज्जो है। अब याद रखो ये जो मुसन्निफ ने कहा, फिर जरा एक दफा तर्जमा देखो साहिब जामी ने क्या फरमाया। कहते हैं वलम मातम मलहद दुबी माजा का रहू जम आऊ अमन अन, और ये जो तारीफ है अतफ की जब पूरी हो गई उस चीज के साथ जिसको मातिन ने जिक्र कर दिया, जम आऊ अमन अन किस एतबार से पूरी हुई, जामे माने होने के एतबार से पूरी हो गई, तो अरदफा हो ज्यादती तोजीही, तो उसके पीछे लेकर आए ज्यादा वजाहत के लिए बिकौली ही अपने इस कौल को। कौन सा कौल? कि ये तवस्सतु बैनहु व बैन मतबूही अहदुल हुरूफिल आशारत। इसमें दोनों एहतमाल हैं, या तो साहिब जामी ये कहना चाहते हैं कि ये भी तारीफ का जुज है, ये भी तारीफ का जुज है, गोया आतफ की पूरी तारीफ ये हुई, अल आतफु ताबिउम मकसूदुम बिन निस्बति मा मतबूही यतवस्सतु बैनहु व बैन मतबूही अहदुल हुरूफिल अशरती। यहां तक पूरी तारीफ है, यहां तक पूरी। हां अलबत्ता इस हिस्से का जामे माने होने में कोई दखल नहीं है, जामे माने पहला हिस्सा ही है तारीफ का। सिर्फ इतना बताना चाहते हैं यह भी तारीफ का जुज है लेकिन जामे माने होने में इसका दखल नहीं, पहले जुज से ही तारीफ जामे माने हो चुकी थी। हां यह जुज तारीफ का बढ़ा दिया ज्यादा वजाहत के लिए, ज्यादती तौजीह, किस लिए? ज्यादा वजाहत के लिए। तो है यह सारी तारीफ, और दलील क्या इसकी? दलील इसकी यह है कि इसके बाद मिसल काम ज़ैदुन व अमरुन मिसाल लाए हैं, तारीफ जब पूरी हो गई तो उसके बाद अब मिसाल जिक्र कर दी, मालूम हुआ यह भी क्या है, तारीफ का जुज है, और लेकिन यह जुज ज्यादा वजाहत के लिए है, जामे माने होने में इस जुज इस हिस्से का दखल नहीं, वो पहला जुज मा मतबूई ही तक जो हिस्सा था उसी से तारीफ जामे माने हो चुकी थी। बात समझ में आ गई? तो या तो यह माना है साहिब जामी का कि यह भी तारीफ का हिस्सा है, अलबत्ता जामे माने होने में इसका दखल नहीं, या साहिब जामी के कहने का यह मतलब है कि यह तारीफ का हिस्सा ही नहीं है, तारीफ पूरी हो गई, तारीफ क्या है? पूरी हो गई। तो सवाल पैदा हुआ कि फिर मिसाल क्यों यहां जिक्र नहीं की, मिसाल तो वो यह तवस्सतु के बाद जाकर जिक्र कर रहे हैं, यह तवस्सतु बैनहु व बैन मतबूही अहदुल हुरूफिल अशरती, उसके बाद जाके मिसाल जिक्र कर रहे हैं। अगर मा मतबूई ही तक तारीफ पूरी हो गई थी तो उसके बाद क्या आनी चाहिए थी? मिसाल। तवज्जो है, मिसाल आनी चाहिए थी क्योंकि तारीफ पूरी हो चुकी है। तो बतलाना चाहते हैं कि भाई तारीफ तो पूरी हो गई है लेकिन यह साथ मजीद वजाहत के लिए यह भी बयान कर दिया कि ताबे और मतबू में हरफे अतफ आएगा, और फिर इकट्ठी मिसाल जिक्र की ताकि ये तारीफ की भी मिसाल हो जाए और साथ जो शर्त जिक्र की है उसकी भी मिसाल हो जाए, दोनों की मिसाल। काम ज़ैदुन व अमरुन दोनों की मिसाल हो गई, ताबे और मतबू दोनों की निस्बत मकसूद है तो ये अमरुन दाखिल हुआ, और नीज दोनों के दरमियान हरफे अतफ भी आ रहा है, शर्त भी पूरी है, जो ज्यादा वजाहत के लिए बात जिक्र की थी उसकी भी यह मिसाल बन गई। तो साहिब जामी के कहने का क्या मतलब है? या तो वो ये कहना चाहते हैं ये आगे वह तवस्सतु बैनहु व बैन मतबूही अहदुल हुरूफिल अशरती, ये भी तारीफ का हिस्सा है लेकिन इसका जामे माने होने में दखल नहीं, लेकिन है हिस्सा तारीफ का, इसीलिए आखिर में मिसाल जिक्र की। या उनके कहने का ये मतलब है कि तारीफ पूरी हो चुकी है और यहां मिसाल जिक्र नहीं की, मिसाल आखिर में जिक्र की क्योंकि दरमियान में ज्यादा वजाहत के लिए एक और बात भी जिक्र कर दी कि ये जो ताबे और मतबू होंगे यहां दरमियान में हरफे अतफ का आना भी जरूरी है, ये शर्त है भाई। बात समझ में आ गई? तो दोनों माना हो सकते हैं। फिर देखिए कहते हैं वलम मा तम्मल हद दुबी माजा का रहू जम आऊ अमन अन, और जब यह तारीफ पूरी हो गई उस चीज के साथ जो मुसन्निफ ने जिक्र की, जम आऊ अमन अन जामे माने होने के एतबार से, आर दफा हूं तो इसके पीछे लेकर आए मुसन्निफ लिज्यादती तौजीह, ज्यादत वजाहत के लिए, बिकौली ही अपने इस कौल को, यतवस्सतु बैनहु अय बैन ज़ालिका ताबिई व बैन मतबूही, कि उस ताबे और उसके मतबू के दरमियान आए, अहदुल हुरूफिल अशरती दस हुरूफ में से कोई एक, सैयती तफसीलुहा फी किस्मिल हुरूफ इंशा अल्लाह ताला, और इन हुरूफ अशरा की तफसील आ जाएगी, फी किस्मिल हुरूफ हुरूफ की किस्म में यानी हुरूफ की बहस के अंदर भाई, इंशा अल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा भाई, मिसल काम ज़ैदुन व अमरुन जैसे काम ज़ैदुन और अमरुन भाई। आगे देखिए कहते हैं वलम यक्तफी बिकौली ही ताबियों यतवस्सतु बैनहु व बैन मतबूही अहदुल हुरूफिल अशरती। सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है। इधर देखिए, साहिब काफिया ने अतफ की क्या तारीफ की, ताबिउम मकसूदुम बिन्निस्बती मा मतबूईही, और इतनी फिर उसकी इतनी मुश्किल तकरीर हमें करना पड़ी भाई। तो मुख्तसरन कह देते साहिब काफिया कि अतफ वो है, यह तवस्सतु बैन ताबिउ व बैन मतबूईही अहदुल हुरूफिल अशरत, कि ताबे और मतबू के दरमियान वो दस हरूफ में से कोई एक हर्फ आना चाहिए, बस ये तारीफ काफी थी। मातूफ हर्फ किसे कहते हैं, ताबे और मतबू के दरमियान एक हर्फ आना चाहिए हरूफ अशरा में से, इससे सारे तवाबे निकल जाते हैं, क्योंकि बाकी तवाबे में किसी के दरमियान हर्फ नहीं आता। तो सिर्फ इतनी तारीफ कर देते, तवज्जो भी है या नहीं, किसकी बात हो रही है, मातूफ बिल हर्फ की। मुझे बताइए, मौसूफ सिफत में हर्फ कोई आता है, नहीं आता। मौक्कत ताकीद में कोई हर्फ आता है, वहां भी नहीं आता। मातूफुन आले और अथवे बयान में कोई हर्फ, वहां भी नहीं आता। बदल और मुबदल मिनहू के दरमियान भी कोई हर्फ नहीं आता। तो अतफ की तारीफ कर रहे थे तो मुख्तसर तारीफ कर देते कि ताबे और मतबू के दरमियान कोई एक हर्फ अतफ आना चाहिए। यह तवस्सतु बैनहू व बैना मतबूईही अहदुल हुरूफिल अशरती, बस इतनी तारीफ कर देते। वो शुरू वाला हिस्सा जिक्र करने की तो कोई हाजत ही नहीं थी। तो उसका जवाब देंगे साहिब जामी के, नहीं, उसकी भी हाजत थी। अगर वो तारीफ न करते तो फिर तारीफ दुखूल गैर से मान्य न होती भाई, इसमें गैर भी दाखिल हो जाते। इसमें कैसे गैर दाखिल हो जाते, कहते हैं इसलिए क्योंकि बाज औकात मौसूफ सिफत के दरमियान भी हर्फ अतफ आ जाता है। बाज औकात, हाँ, आज एक नई बात आप पढ़ेंगे भाई, कभी कभार मौसूफ और सिफत के दरमियान भी हर्फ अतफ आ जाता है, तो कभी मौसूफ सिफत के दरमियान भी हर्फ अतफ आ जाता है, तो फिर तो उसने भी तारीफ में दाखिल हो जाना था। पहले मौसूफ आया, फिर सिफत आई, और दरमियान में क्या है, हर्फ अतफ है, तो आपकी तारीफ, यह तवस्सतु बैन ताबिउ वल मतबूउ अहदुल हुरूफिल अशरत, यह तारीफ सादिक आ रही है या नहीं, तो यह है सिफत, लेकिन तारीफ मातूफ की भी सादिक आ रही है, यह सिफत भी हो गई और मातूफ भी हो गई, सिफत भी हो गई और मातूफ भी हो गई। तो इस सूरत में तारीफ दुखूल गैर से मान्य अन्ना होती भाई। बात समझ में आ गई जी। अब देखिए भाई, इसी को बयान करेंगे, वलम यक्तफी बिकौली ही ताबियों यतवस्सतु बैनहु व बैन मतबूईही अहदुल हुरूफिल अशरती, और मातिन यानी साहिब काफिया ने इक्तफा नहीं किया अपने इस कौल पर कि ताबियों यतवस्सतु बैनहु व बैन मतबूईही अहदुल हुरूफिल अशरती, सिर्फ इस कौल पर इक्तफा नहीं किया बल्कि शुरू में और भी तारीफ लेकर आए। लिअन्न अल-हुरूफ क़द ततवस्सतु बैन अस-सिफ़ाति, इसलिए क्योंकि कभी कभार हुरूफ बीच में आ जाते हैं सिफात के, मिस्लु जाअनी ज़ैदुन अल-आलिमु वश्शाइरु वद-दिबीरु, जाअनी ज़ैदुन अल-आलिमु वश्शाइरु वद-दिबीरु, दिबीर याद रखो महरम आफंदी जो शरा है जामी की, उन्होंने इसको दाल के कसरा के साथ लिखा है दिबीर, और कहते हैं ये कातिब को कहते हैं जो नसर लिखता है। एक होती है नजम जिसमें जो अशार होते हैं, और एक है नसर जो आम कलाम है। जैसे ये जामी हम पढ़ रहे हैं ये नसर है, ये क्या है, नसर है, ये अशार की सूरत में नहीं है। तो इस नसर लिखने वाले को, उसको दिबीर कहते हैं। तवज्जो है, और फरमाया है कि ये फारसी लफ्ज है। आजकल फारसी के अंदर दबीर दाल के फतहा के साथ राइज है, और वो उस्ताद को कहते हैं। दबीर किसे कहते हैं, उस्ताद को। तो हो सकता है कदीम ये एक नसर लिखने वाले को कहते हों, कदीम भाई, जैसे कि महरम आफंदी के मुसन्नी फरमाते हैं। तो जा अनी जैदुन, मेरे पास वो जैद आया, अल आलिमु जो आलिम है, वह शायरु और शायर है, वह दिबीरु और जो कातिब है, जो नसर लिखता है, नसर कहता है। आप देखो भाई, जा अनी जैदुन अल आलिमु व शायरु व दिबीरु, अब इस तरकीब पे नजर रखना भाई। जैदुन ये क्या है, मौसूफ, अल आलिम है उसकी सिफत, और ये है मातूफुन अलै, व हर्फ अतफ, अशाइर इसका अतफ किस पर है, अल आलिम पर, और अल आलिम जैद की सिफत है, तो अशाइर भी क्या हुई, जैद की सिफत। इसी तरह व दिबीर इसका अतफ भी उसी अल आलिम पर है, और अल आलिम तो जैद की सिफत थी, तो अद्दिबीर भी क्या है, जैद की सिफत है। या अद्दिबीर का आतफ कर लो शायर पर, और शायर का अथर फिर किस पर है, अल आलिम पर। तो बहरहाल जो भी सूरत आप बना लें, चाहे वो जो असल अव्वल है उस पर भी आतफ कर सकते हैं और जो सबसे करीब हो उस पर भी आतफ कर सकते हैं। तो दिबीर का आतफ आप यूं भी कह सकते हैं आलिम पर है, जो अव्वल है, अव्वल सिफत है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि दिबीर के जो सबसे करीब हो और वो अशायर है, इस पर इसका आतफ है। तवज्जो है। तो जब भी आतफ करते हैं, या वो जो असल होता है उस पर आतफ करते हैं, या जो बिल्कुल साथ मिला हुआ हो उस पर आतफ करते हैं, दरमियान वालों पर आतफ नहीं कर सकते। तो देखो, अल आलिम ये जैद की सिफत है, इसी पर आतफ है। अशायर का ये भी जैद की सिफत है, और इसी पर अदिबीर का आतफ है, ये भी जैद की सिफत है। अब देखो, जैद ये मौसूफ है और वशायर ये क्या है, इसकी सिफत है। और मौसूफ सिफत के दरमियान देखो वह आ रहा है, वशायर है ना
जी।
तो ये मौसूफ सिफत के दरमियान वह हरफ आतफ आ गया, तवज्जो है। तो ये तो जैद की सिफत है। सिफत किसे कहते हैं, जो ऐसे माना पर दलालत करे जो किसमें पाया जाए, मतबूअ में, मौसूफ में। तो यहां पर भी शायर एक ऐसे माना पर दलालत कर रही है जो किसमें पाया जा रहा है, मतबूअ यानी जैद के अंदर। तो यह सिफत है, लेकिन यह भी मातूफ की तारीफ में दाखिल हो जाती, क्योंकि अगर यह तारीफ करते कि ताबे और मतबू के दरमियान हरफ आतफ आना चाहिए, यहां जैद और व शायर के दरमियान वह हरफ आतफ आ रहा है। इसी तरह जैद व दिबीर के दरमियान भी वह हरफ आतफ आ रहा है। तो दिबीर है तो जैद की सिफत, लेकिन इसको मातूफ कहना पड़ता, जैद को मातूफुन अलैह कहना पड़ता और दिबीर को मातूफ कहना पड़ता, हालांकि दिबीर के लिए जैद मातूफुन अलैह नहीं और दिबीर जैद के लिए मातूफ नहीं, बल्कि दिबीर जैद की सिफत है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं لأن الحروف قد تتوسط بين الصفات, इसलिए क्योंकि हरूफ कभी कभार सिफात के बीच में आ जाते हैं। मिस्लु जाअनी ज़ैदुन अलआलिम व शाइर व दिबीर, फसिफतु दाखिलु अलैहा हर्फु अलअत्फ कशाइर व दिबीर लहा जिहतानी। यहां साहिब जामी अब मजीद वजाहत करेंगे, तवज्जो से जरा उस तरकीब पे नजर रखो। जाअनी ज़ैदुन अलआलिम व शाइर व दिबीर, ये जो शायर है, मसलन एक शायर को देख लें या दिबीर को देख लें, दोनों में एक ही तकरीर होगी। मसलन ये बस शायर आया, इस शायर का आतफ है किस पर, आलिम पर। तो इस शायर की दो जिहतें हैं, दो हैसियतें हैं। एक हैसियत से ये जैद की सिफत है, जैद मतबू और ये ताबिया है, वो मौसूफ और ये सिफत। और दूसरी हैसियत यह है कि शायर का आतफ हो रहा है अल आलिम पर, और अल आलिम के वास्ते से यह जैद की सिफत बन रही है, बराह रास्त सिफत नहीं बन रही। तो अल आलिम हुआ मातूफुन अलैह और अशायर क्या हुआ, मातूफ। और इस एतबार से ये मातूफ है, ये क्या है, तवज्जो है। ये अशायर सिफत किसकी, जैद की। तो जैद हुआ मतबू और ये अशायर हुआ ताबिया, और इस एतबार से, इस एतबार से ये सिफत है, ये मातूफ नहीं। जैद मौसूफ और ये सिफत है, ये मातूफ नहीं, अगरचे इसके और जैद के दरमियान वाव आ रहा है। और दूसरी हैसियत से अशायर का आतफ है अल आलिम पर, और उस हैसियत से अल आलिम मातूफुन अलैह है और अशायर क्या है, मातूफ है। तो इस एतबार से ये ताबिअ है अल आलिम के और ये मातूफ है। तो गोया अशायर में दो जिहतें आ गईं, एक एतबार से ये ताबिअ है जैद की, यानी उसकी सिफत है, सिफत भी तो ताबिअ होती है ना, तवाबे में से है। तवज्जो है, क्या बात हुई, सिफत भी किसमें से, तवाबे। जा अनी जैदुन अल आलिम व शायर, तो इस एतबार से शायर क्या है, जैद की सिफत है। जब जैद की सिफत है, जैद हुआ मौसूफ और यह हुई सिफत, और मौसूफ सिफत के दरमियान वह आ गया। तो जैद इसका मतबू और यह ताबिया
जी,
लेकिन दोनों के दरमियान क्या आ गया, हर्फ आतफ, लेकिन फिर भी यह सिफत ही कहलाएगी, ये मातूफ नहीं कहलाएगा अगरचे वह आ रहा है। तो एक एतबार से इसका मतबू जैद है और यह उसकी ताबिया है, और दूसरी एतबार से अशायर का आतफ हो रहा है अल आलिम पर। भाई तो अल आलिम हुआ मतबू और अशायर हुआ ताबिअ, और इस एतबार से यह मातूफ है। तो इस शायर में दो एतबार हो गए, ये एक एतबार से जैद के ताबे और एक एतबार से अल आलिम के ताबे। जैद के ताबे होने के एतबार से यह सिफत है और अल आलिम के ताबे होने के एतबार से यह मातूफ है। नहीं, तवज्जो, तवज्जो से सुनो। अशायर सिफत किसकी, जैद की, तो ये जैद के भी ताबिया। और अशायर का आतफ किस पर, अल आलिम पर, तो ये अल आलिम के भी ताबिया। तो अल आलिम के ताबे होने के इतबार से ये मातूफ है, जैद के ताबे होने के इतबार से ये मातूफ नहीं बल्कि सिफत है। तो अगर साहिब काफिया सिर्फ ये तारीफ कर देते कि आतफ किसे कहते हैं कि ताबे और मतबू के दरमियान हर्फ आतफ आना चाहिए, तो इस सूरत में तो ये सिफत भी दाखिल हो जाती। हालांकि देखो अशायर की जैद की तरफ निस्बत करो तो जैद क्या हुआ, मतबू, और अशायर क्या है, ताबे यानी सिफत है। तो इस एतबार से इसको सिफत कहेंगे, मौसूफ नहीं कहेंगे, अगरचे दरमियान में हर्फ आतफ आ रहा है। लेकिन अगर तारीफ कर देते कि मातूफ किसे कहते हैं, किताबे और मतबू के दरमियान क्या आना चाहिए, हर्फ आतफ, तो इस जिहत से भी इसको आतफ कहना पड़ता, यानी जैद की तरफ निस्बत करते हुए भी अशायर को क्या कहना पड़ता, आतफ कहना पड़ता, क्योंकि जैद और अशायर के दरमियान वह आ रहा है। लेकिन इस एतबार से तो यह आतफ नहीं है, इस एतबार से तो यह सिफत है। तो सिफत किसमें दाखिल हो जाती, आतफ की तारीफ में। सिफत किसमें दाखिल हो जाती, आतफ की तारीफ में, यानी अशायर की जब जैद की तरफ निस्बत करें। बात समझ में आ गई, तो ये उसकी सिफत है, ये उस पर मातूफ नहीं है, अगरचे दोनों के दरमियान वाव आ रहा है। तो अगर आप ये तारीफ करते कि आतफ वो होता है किताबे और मतबू में हर्फ आना चाहिए, तो यहां भी जैद मतबूआ है और वह शायर उसकी सिफत है और दरमियान में वाव आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में क्या कहना पड़ता, मातूफ और मातूफ अलह। हालांकि मातूफ और मातूफ अलह नहीं, इस हैसियत से यह मौसूफ सिफत है। तवज्जो है, हां, अल आलिमु व शायरु, आलिम की तरफ निस्बत करते हुए शायर मातूफुन अलैह है। भाई देखिए, भाई कहते फसिफतु दाखिलु अलैहा हर्फुल अत्फी, बस वो सिफत के दाखिल है उस पर हर्फ अताफ। तवज्जो है, फसिफतु यह है मौसूफ, अदाखिलु यह है उसकी सिफत, दो मौसूफ सिफत दोनों मारिफा हैं, असिफतु भी मारिफा और अदाखिलु भी मारिफा। और याद रखो ये सिफत भी हाल मुतालिक ही है, सिफत भी हाल मुतालिक ही किसे कहते हैं, जो लफ्जों में सिफत हो एक की, माना में सिफत हो उसके उसके मुतालिक की या गैर की, तवज्जो है। तो यहां पर भी अदाखिल लफ्जों में ये सिफत है, असिफत लफ्ज की, और आगे हर्फुल अत्फी इसका फाइल आ रहा है। अदाखिल के लिए क्या चाहिए, फाइल चाहिए, क्या चीज दाखिल हो रही है, हर्फुल अत्फी, हर्फ अतफ दाखिल हो रहा है अलैहा उस सिफत पर। तो ये अलैहा की हा जमीर ये रबत दे रही है, मौसूफ सिफत में क्या चाहिए, रबत। देखो असिफतु मरफू है, मौसूफ है, अदाखिलु ये भी मरफू क्योंकि ये सिफत है और सिफत क्या होती है, मौसूफ के मुताबिक एराब आता है। तो सिफत भी हाल मुतालिक ही में कितनी चीजों में मुताबिक जरूरी, दो चीजों में, एराब में भी और तारीफ तनकीर में भी। तवज्जो से सुनो, बस सिफत वो सिफत अदाखिलु अलैहा हर्फुल अत्फी के जिस पर हर्फ अतफ दाखिल हो, तो अदाखिल इसमें फाइल है, इसका रबत चाहिए था सिफत के साथ, तो ये अलैहा की हा जमीर क्या कर रही है, रबत दे रही है। तो कहते हैं फसिफतु दाखिलु अलैहा हर्फुल अत्फी, बस वो सिफत जिस पर हर्फ अतफ दाखिल हो रहा है, का शायरी व दबीरी, जैसे कि इस मिसाल के अंदर शायर और दबीर का लफ्ज है, लहा जिहतानी ये वाली जो सिफत है इसकी दो जिहतें हैं, इहदाहुमा उनमें से एक जिहत जो है, कौनुहा सिफतन लिजैदीन इसका जैद के लिए सिफत होना है। यह अशायर और दबीर में एक जिहत क्या है, यह जैद के लिए सिफत है, ताबियातन लहू और यह जैद के ताबिया है, बितबईयतिल मातूफी अलैही मातूफ अलैह के ताबे होने की वजह से, क्योंकि क्योंकि अशायर और दबीर का आतफ किस पर है, अल आलिम पर है, और मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलैह का होता है, और मातूफुन अलैह अल आलिम यह तो जैद की सिफत है, तो मातूफ भी क्या है, जैद की सिफत। तो अशायर और अदबीर ये अल आलिम के ताबे होने की वजह से यह भी क्या है, जैद के ताबे हैं, उसकी सिफत है। फिर देखिए कहते हैं फसिफतु दाखिलु अलैहा हर्फुल अत्फी का शायरी व दबीरी, तो कहते हैं वो सिफत जिस पर हर्फ अतफ दाखिल हो रहा है, जैसे शायर और दबीर है इस मिसाल के अंदर, लहा जिहतान इसमें दो जिहतें हैं, इहदाहुमा उन दो में से एक जिहत यह है, कौनुहा सिफतन लिजैदीन इसका जैद के लिए सिफत होना, ताबियातन लहू उसके ताबे होना, बितबईयतिल मातूफी अलैहि मातूफ अलैह के ताबे होने की वजह से, व उखराहुमा और दूसरी जिहत इसके इन सिफतों के अंदर अशायर और दबीर में यह है, कौनुहा मातूफन अल सिफतिल मुतकद्दिमती, वो इनका सिफत मुतकद्दिमा पर मातूफ होना है, वो सिफत जो इनसे माकबल में है उस पर इनका इनका मातूफ होना है, ताबियातन लहा और उसके ताबिया होना है, वयस्दुकु अला हादिही सिफति और इस सिफत पर यह बात सादिक आती है, मिन जिहती हल उला पहली जिहत से, पहली जिहत के एतबार से यह जैद की सिफत है जैद के ताबे, दूसरी जिहत के एतबार से यह अल आलिम के ताबे, लेकिन पहली जिहत जो उसमें वो जैद के ताबे है उस एतबार से तो यह जैद की सिफत है, जैद पर मातूफ तो नहीं, लेकिन दरमियान में हर्फ अतफ आया या नहीं, तो आतफ की तारीफ इस पर सादिक आ जाती। अगर आतफ की तारीफ हम क्या करते कि मातूफ और मातूफुन आले के दरमियान हर्फ अतफ आना चाहिए, सिर्फ यह तारीफ करते यतवस्सतु बैनहु व बैन मतबूइहि अहदुल हुरूफिल अशर, अगर सिर्फ यह तारीफ की जाती तो यहां पर अशाइर यह सिफत है जैद की, लेकिन इसको भी मातूफ कहना पड़ता क्योंकि जैद और अशाइर के दरमियान वो आ रहा है, हालांकि ये इस एतबार से तो यह मातूफ नहीं, इस एतबार से तो यह जैद की सिफत है, तवज्जो है। तो कहते हैं वयस्तुकु अला हादिही सिफति मिन जिहतिहल उला, तो सादिक आता इस सिफत पर इसकी पहली जिहत के एतबार से कि अन्नहा ताबियातुन, की यह सिफत क्या है ताबिया है, लिअन्नहा सिफतुन लिज़ैदिन, इसलिए क्योंकि यह जैद की सिफत है और सिफत भी क्या होती है ताबिया होती है, और यह तवस्सतु बैनहा व बैन ज़ैदिन हर्फुल अत्फी, और इसके और जैद के दरमियान हर्फ अतफ आया है, तो यह सारी तारीफ इस पर सादिक आ जाती। अब एतराज होता है कि मौसूफ सिफत के दरमियान क्या कभी हर्फ आतफ आ सकता है, तो आपको साहिब जामी बताएंगे कि दो लफ्जों के दरमियान हर्फ आतफ आने का यह मतलब नहीं है कि वो मातूफ और मातूफ अलह हैं, दो लफ्जों के दरमियान हर्फ आतफ आने का यह मतलब नहीं है कि सानी अव्वल पर क्या है मातफ है मातूफ है, जैसे जैद और अशायर के दरमियान क्या आया वो आया, इस वो आने के साथ यह लाजिम नहीं है कि अशायर का जैद पर अतफ हो रहा है। कहते हैं लिअन्न तवस्सुत हर्फिल अत्फी बैन शैअैनी, इसलिए क्योंकि हर्फ अतफ का बीच में आना दो चीजों के, ला यल्ज़मु अन यकून लिअत्फिस सानी अलल अव्वली, इससे यह लाजिम नहीं आता कि यह सानी का अतफ करने के लिए है अलल अव्वली पहले पर, दो चीजों के दरमियान हर्फ अतफ आ जाए तो इसे यह लाजिम नहीं आता कि यह हर्फ अतफ किस लिए लाया गया है कि सानी का अतफ हो रहा है अव्वल पर, ऐसा लाजमी नहीं है। फलौ लम यकुन कौलुहु मकसूदुम बिन निस्बति मा मतबूइही, अब फायदा बतलाने लगे हैं। एतराज क्या हुआ था कि साहिब काफिया ने इतनी लंबी तारीफ की, सिर्फ इतना कह देते अतफ वो है कि ताबे और मतबू के दरमियान क्या आना चाहिए हर्फ अतफ, सिर्फ इतनी तारीफ कर देते और ताबिउ मकसूद उन बिन निस्बति मा मतबूइही ये कहने की जरूरत नहीं। कहते हैं नहीं, अब उस कैद का फायदा आपको समझ में आएगा, जब हमने कैद लगा दी ऐसा ताबिया कि वो मतबू के साथ क्या होना चाहिए मकसूद बिन निस्बत होना चाहिए, तो अब ये सिफत खारिज हो गई क्योंकि सिफत सिफत वो मकसूद बिन निस्बत नहीं होती, वो बतौर फरा के जिक्र होती है, मौसूफ के लिए सिर्फ मौसूफ की वजाहत या तख्सीस करती है, सिफत कोई मुस्तकिलन जिक्र नहीं, नहीं। तवज्जो सबक की तरफ तवज्जो है जी। फिर सुनो, साहिब काफिया ने मातूफ की तारीफ की कि मातूफ ऐसा ताबिया है जो मकसूद बिन निस्बत होता है मा मतबू ही साथ उसके मतबू के, और फिर आगे फरमाया कि मातूफ बहर्फ के अंदर ताबिया और मतबू के दरमियान हर्फ अतफ का भी आना जरूरी है, तो एतराज हुआ कि भाई सिर्फ इतना कह देते कि ताबे और मतबू में हर्फ अतफ का आना लाजमी है तो बाकी सारे तवाबे निकल जाते क्योंकि उनमें तो ताबे और मतबू के दरमियान हर्फ अतफ नहीं आता, तो साहिब जामी बतला रहे हैं कि नहीं, कभी कभी सिफत और मौसू के दरमियान भी हर्फ अतफ आ जाता है, और फिर उसकी मिसाल जिक्र की जानी जैदुनिल आलिमो व शायरु व दिबीरु, तो ये व शायर और व दिबीर ये दोनों जैद की सिफत हैं अल आलिम के वास्ते से, क्योंकि इनका आतफ अल आलिम पर है और अल आलिम जैद की सिफत है और मातूफ का वही हुक्म होता है जो किसका हो मातूफुन आले का, तो ये भी जैद की सिफत हुई, जब ये जैद की सिफत हुई तो इनको सिफत कहेंगे क्योंकि ये ऐसे माना पर दलालत कर रही है जो किसमें पाया जा रहा है زید میں, اشاعر بھی کون ہے زید, ادیبیر بھی کون ہے زید. تو یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہیں یہ اشاعر اور ادیبیر جو زید میں پایا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ معطوف نہیں کہلائیں گی, یہ صفت کہلائیں گی. لیکن دیکھ لو موصوف اور صفت میں حرف واو آ رہا ہے, معلوم ہوا حرف واو موصوف صفت کے اندر آ سکتا ہے. حرف عطف دو چیزوں کے درمیان حرف عطف آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ثانی کا اول پر عطف ہے, ورنہ تو پھر یہاں بھی کہنا پڑے گا کہ یہ اشاعر کا عطف ہے زید پر, ادیبیر کا عطف ہے زید پر. لیکن نہیں, حرف عطف دو چیزوں کے بیچ میں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثانی کا اول پر عطف ہے. تو اگر صاحب کافیہ صرف یہ تعریف کرتے کہ عطف وہ تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حرف عطف آنا چاہیے, تو یہ بشاعر اور ودبیر جو زید کی صفتیں ہیں ان کو بھی صفت ہونے کے اعتبار سے معطوف بھی کہنا پڑتا. صفت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو معطوف بھی کہنا پڑتا, یعنی اسی جہت سے کہ یہ زید کے تابع ہیں. تو زید ہوا مطبوع اور اشاعر کیا ہے؟ تابع. دیکھو یہ تابع بھی ہے اور درمیان میں حرف عطف بھی ہے. آپ نے بھی کیا تعریف, اگر آپ یہ تعریف کرتے عطف ایسا تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان کیا آئے, حرف عطف آئے, تو زید موصوف اور وہ شاعر, یہ شاعر کیا اس کی صفت, تو یہ اشاعر تابع اور زید کیا ہے مطبوع, اور مطبوع اور تابع میں کیا آ رہا ہے واو آ رہا ہے, تو یہ زید کی صفت ہے. لیکن اس اعتبار سے بھی اس کو معطوف کہنا پڑتا, حالانکہ یہ اس اعتبار سے معطوف نہیں ہے کہ جو زید اس کا مطبوع ہے یہ زید کے تابع ہے, بلکہ یہ معطوف کس اعتبار سے ہے, العالم کے اعتبار سے یہ معطوف ہے. العالم ہے معطوف علیہ اور اشاعر کیا ہے اس پر معطوف. توجہ ہے؟ تو گویا اشاعر کے دو مطبوع ہو گئے, ایک مطبوع کون زید اور ایک مطبوع کون العالم. تو اشاعر زید کے بھی تابع اور اشاعر العالم کے بھی تابع, لیکن العالم کے تابع ہونے کے اعتبار سے اس کو معطوف کہیں گے, زید کے تابع ہونے کے اعتبار سے اس کو معطوف نہیں کہیں گے بلکہ صفت کہیں گے. لیکن اگر وہ صرف یہ تعریف کر دیتے کہ تابع وہ ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حرف عطف آئے, تو پھر اشاعر کو زید کے تابع ہونے کے اعتبار سے بھی اس کو معطوف کہنا پڑتا, حالانکہ یہ معطوف نہیں کیونکہ ان میں اگرچہ حرف واو آیا ہے لیکن دو چیزوں کے درمیان حرف عطف آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ثانی اول پر معطوف ہے. جیسے یہاں اشاعر اور زید میں حرف عطف آیا لیکن اس کے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشاعر معطوف ہے زید پر. تو اسی لیے کہتے ہیں وہ جو قید لگائی تھی تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعه, تو جب یہ قید لگا دی تو اب یہ خارج ہو گیا تعریف سے. اب یہ کیا ہوا؟ خارج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ صفت صفت وہ مقصود بالنسبت نہیں ہوتی, وہ صرف موصوف کی وضاحت کرتی ہے, وہ الگ مستقلاً مقصود نہیں. تو جب کہا وہ جو شروع کا حصہ تھا العطف تابع مقصود من نسبتی کہ وہ نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے, تو اس کے ذریعے یہ جو صفت ہے جو عطف کی تعریف میں داخل ہو رہی تھی یہ نکل گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا اگر صرف یہ توسطوں کے ساتھ تعریف کرتے تو یہ تعریف مانع نہ رہتی, یہ وشاعر اور ودبیر بھی اس میں داخل ہو جاتے پہلی جہت کے اعتبار سے. حالانکہ پہلی جہت کے اعتبار سے تو یہ صفت ہیں یہ معطوف نہیں ہیں. تو وہ جو پیچھے قید آئی تھی اس قید کی وجہ سے یہ نکل گئے, اس لیے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے. تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعه اس کا ذکر کرنا ضروری تھا, اس لیے صاحب کافیہ نے وہ مشکل تعریف ذکر کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فلو لم یکن قوله مقصود بالنسبت مع مطبوعه, تو کہتے ہیں ماتین کا یہ جو قول آیا تھا شروع میں مقصود بالنسبت مع مطبوعه اگر یہ نہ ہوتا لدخل هذه الصفة من جهتها الاولى, تو یہ والی صفت اپنی پہلی جہت کے اعتبار سے داخل ہو جاتی فی حد المعطوف, کس کے اندر؟ معطوف کی حد میں. وہی من هذه الجهت ليست معطوفه, حالانکہ یہ تو یہ صفت جو ہے اس جہت سے یہ تو معطوف نہیں ہے, یہ تو صفت ہے. فلم يبقى مانعا, تو تعریف مانع ہو کر باقی نہ رہتی, یعنی تعریف مانع نہ رہتی. معلوم ہوا آج آپ کو ایک نئی قیمتی بات پتہ چل گئی کہ کبھی کبھار موصوف صفت میں بھی حرف عطف آ جاتا ہے, لیکن حرف عطف آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صفت کا عطف ہو رہا ہے موصوف پر. अब सवाल पैदा होता है, ऐ साहिब जामी आपने हमें बताया मौसूफ सिफत में भी कभी हर्फ अतफ आ जाता है, हर्फ अतफ आ जाता है, क्या अरबी जुबान के काबिल एतमाद उलमा में से भी किसी ने ऐसी बात जिक्र की है, या आप एक नई बात कर रहे हैं? तवज्जो है। तो चुनांचे अब आगे साहिब जामी अल्लामा जमखशरी का कौल जिक्र करेंगे, अल्लामा जमखशरी जिन्होंने कुरान की अजीम तफसीर का शाफ लिखी भाई, जो कुरान की फसाहत और बलागत को बयान करती है, कशाफ तफसीर भाई, और इतनी अजीम का तफसीर लिखी कि क्यामत तक आने वाले तमाम मुफस्सिरीन उसके मोहताज हैं भाई। और उलमा फरमाते हैं कि हो सकता है क्यामत के दिन अल्लामा जमखशरी अपनी ये तफसीर उठाए हुए अल्लाह के दरबारे जलाल और जमाल में हाजिर हों और कहें, ए अल्लाह मैंने आपके कुरान की खिदमत की और ऐसी अजीम तफसीर लिखी, इस तफसीर के वास्ते से मेरी मगफिरत फरमा दीजिए। अलबत्ता याद रखना अल्लामा जमखशरी भाई ये मोतजिली थे, मोतजिला एक गुमराह फिरका गुजरा है भाई, मोतजिला क्या है, गुमराह फिरका है, जो फलसफे के बहुत बड़े माहिर थे, मंतिक और फलसफे के बहुत बड़े माहिर थे, हत्ता के फलसफे के उसूलों को इन्होंने असल ठहरा लिया, और कुरान और हदीस में अगर कोई बात फलसफी उसूलों के खिलाफ आती तो वो उसमें तावील करते, फलसफे में तावील ना करते बल्कि किस में तावील करते, कुरान और हदीस में। तो बहरहाल ये अल्लामा जमखशरी अरबी जुबान में निहायत काबिल एतमाद हैं, हत्ता कि मैंने बताया इनकी तफसीर ऐसी है कि क्यामत तक आने वाले तमाम मुफसरीन इस तफसीर के मोहताज हैं। इसके अंदर वो जिक्र करते हैं कुरान की फसाहत और बलागत को भाई। तो कहते हैं उन्होंने भी जिक्र किया है, अल्लामा जमखशरी ने भी, जिन पर तमाम उलमा का एतमाद है और उनकी बातों को सनद के तौर पर जिक्र किया जाता है कि उन्होंने इस मसले में यूं फरमाया है। तो ये अल्लामा जमखशरी ने भी लिखा है कि कभी कभार मौसूफ सिफत के दरमियान हर्फ अतफ ले आते हैं इत्तेसाल को पक्का करने के लिए, किस लिए, ताकीद लुसूक को, लुसूक लाम स्वाद वो और काफ दो नुकतों वाला, लुसूक, लुसूक का माना इत्तेसाल, जोड़। देखो मौसूफ सिफत में इत्तेसाल होता है, मौसूफ सिफत में क्या होता है, इत्तेसाल और जोड़ होता है। तो अल्लामा जमखशरी फरमाते हैं कभी मौसूफ सिफत में भी हर्फ अतफ ले आते हैं ताकि वो जो दोनों के दरमियान इत्तेसाल है उसको पक्का कर दे। वो भी किस चीज का फायदा देता है, जमा का, जानी जैद उन व अमरुन, मालूम हुआ जैद के साथ साथ अमर भी आया है, तो जैसे वो जमा का फायदा देता है तो इसी वो को मौसूफ सिफत के दरमियान ले आते हैं तो उनके दरमियान जो जोड़ है इत्तेसाल है उसमें ये वो ताकीद पैदा कर देता है, उसको पक्का कर देता है। बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं वकील और कहा गया है कद जव वजह जमखशरी यू वकू अलवा भी बैन अल मौसूफी व सिफती के तहकीक जायज करार दिया है अल्लामा जमखशरी ने वाओ के वाके होने को मौसूफ और सिफत के दरमियान, लिताकीद लुसूकी, लुसूक का क्या माना, इत्तेसाल, लिताकीद लुसूकी, उस इत्तेसाल को उस जोड़ को पक्का करने के लिए, फी मवाज़िअ अदीदतिन मिनल कशाफी, कई जगहों में कशाफ के अंदर, अल्लामा जमखशरी ने अपनी तफसीर कशाफ में कई जगहों पर यह जिक्र किया है कि मौसूफ सिफत के दरमियान कभी कभार वाव आ जाता है, लिताकीद लुसूकी, किस लिए, इत्तेसाल की ताकीद के लिए। नीज आगे फरमा रहे हैं साहिब जामी कहते हैं वह कमल मुसन्निफू, अब साहिब काफिया की भी बात जिक्र करेंगे, वह कमल मुसन्निफू रहिमहुल्लाहु फी शरहिल मुफस्सली, और हुक्म लगाया है मुसन्निफ ने फी शरहिल मुफस्सली, उन्होंने जो मुफस्सल की शरह लिखी है, याद रखिए यह मुफस्सल ये भी अल्लामा जमखशरी की किताब है, मुफस्सल भी क्या है, अल्लामा जमखशरी की किताब है और ये नहव के अंदर है, और इसके अंदर वो इसको मुफस्सल इसलिए कहते हैं, मुफस्सल का माना है फसल, फसल की हुई, इसके अंदर वो फसलें बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, हर चंद सत्रों के बाद नई फसल, हर चंद सत्रों के बाद नई फसल, समझ में आया। तो बाद औकात जरा लंबी फसल होगी और बाद औकात बड़ी छोटी फसलें, हत्ता के बाद औकात जो है फसल एक एक सत्र की फसल होती है, हत्ता के बाद औकात ایک ایک سطر کی فصل ہوتی ہے. تو یہ مفصل ان کی کتاب ہے جو علم نحو کے اندر ہے بھائی. کس کے اندر ہے؟ علم نحو کے اندر. اور صاحب کافیہ نے اسی سے کافیہ کو اخذ کیا. جو صاحب کافیہ نے کافیہ لکھی ہے یہ کہاں سے اخذ کر کے لکھی ہے؟ اسی مفصل سے. لیکن صاحب کافیہ کو یہ فصل فصل کا طریقہ اتنا ناپسند آیا کہ انہوں نے پوری کافیہ میں ایک بھی فصل ذکر نہیں کی بھائی. تو وہ اور لفظوں کے ذریعے اشارہ کر دیتے ہیں کہ نئی بحث شروع ہو رہی ہے لیکن فصل کا لفظ نہیں لاتے بھائی. تو یہ شرح جامی کا جو متن ہے کافیہ یہ اسی مفصل سے ماخوذ ہے. اور اسی مفصل کی ایک شرح بھی لکھی ہے صاحب کافیہ نے, اس کا نام ہے ایزاح بھائی. اوزح یوزح ایزاحن, تو ایزاح کا شرح لکھی ہے. اس کے اندر بھی صاحب کافیہ اسی قسم کی بات ذکر کرتے ہیں. سنیے دیکھیے بھائی. وحکم المصنف رحمہ اللہ فی شرح المفصل, اور حکم لگایا ہے مصنف یعنی صاحب کافیہ نے شرح مفصل یعنی ایزاح کے اندر فی مباحث الاستثنائی, استثناء کے مباحث میں وہاں پر انہوں نے یہ حکم لگایا ہے کہ ان قولہ تعالی, بھائی دیکھیے ذرا عبارت دیکھ لیجئے, ان قولہ تعالی ولہا منذرون فی, اس قول میں اللہ کے وما اہلکنا من قریتن الا ولہا منذرون, وما اہلکنا من قریتن, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو الا ولہا منذرون. الا دیکھو حرف استثناء آ گیا یہاں پر, تو صاحب کافیہ نے بھی اس کو کہاں ذکر کیا ہے؟ استثناء کی بحث کے اندر بھائی. تو دیکھو وما اہلکنا من قریتن, اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو, الا ولہا منذرون, مگر یہ کہ ان کے لیے خبردار کرنے والے تھے. منذر ڈرانے والا, خبردار کرنے والا. اللہ فرما رہے ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا لیکن پہلے ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے, یعنی پیغمبر بھیجے جو ان کو خبردار کرتے تھے کہ تم غلط راستے پر ہو بھائی. پھر خبردار کرنے کے بعد بھی جب وہ کسی صورت وہ اصلاح پر آمادہ نہ ہوتے تو پھر ہی اس کے بعد ہم ان کو ہلاک کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وما اہلکنا من قریتن الا ولہا منذرون, اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو مگر یہ کہ ان کے لیے ڈرانے والے تھے, ان کے لیے خبردار کرنے والے تھے. اب دیکھو کہتے ہیں صاحب کافیہ نے اپنی جو شرح لکھی مفصل کی جس کا نام ایزاح ہے, انہوں نے وہاں استثناء کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے وما اہلکنا من قریتن الا ولہا منذرون, اس کے اندر یہ جو ولہا منذرون آیا ہے, کیا آیا ہے؟ ولہا منذرون جو آیا ہے یہ قریہ کی صفت ہے, کیونکہ قریہ ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد لہا منذرون یہ مبتدا خبر ہیں, اور مبتدا خبر مل کر کیا؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں. تو یہ نکرہ کی صفت بن جائے گا. توجہ ہے؟ تو دیکھو صاحب کافیہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ولہا منذرون واو آ رہا ہے اور پھر بھی صفت قرار دے رہے ہیں, معلوم ہوا موصوف صفت کے درمیان واو آ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یاد رکھیے قرآن میں ولہا منذرون یہاں واو نہیں ہے. قرآن میں یہاں واو نہیں ہے. آیت اس طرح ہے وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون, یہاں واو نہیں ہے. توجہ ہے؟ تو محشی حضرات بھی یہی لکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہاں واو نہیں ہے, اور کہتے ہیں یہ دراصل کسی سے لکھتے ہوئے کہیں ایک غلطی ہوئی. پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں, تو ایزاح جو شرح تھی کس کی؟ مفصل کی. اور کس نے لکھی تھی؟ صاحب کافیہ نے. اس کے اندر کسی نے نقل کیا اور صاحب کافیہ نے یہاں اور آیت ذکر کی تھی, کسی لکھنے والے نے بے خیالی میں بدل دیا, کیونکہ دونوں آیتیں بالکل ایک جیسی ہیں. کہتے ہیں صاحب کافیہ نے یہاں یہ آیت ذکر کی ہے, دیکھو وما اہلکنا من قریتن الا ولہا کتاب معلوم. قرآن میں دوسری جگہ بالکل بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ آیت ہے وما اہلکنا من قریتن, اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا, الا ولہا کتاب معلوم, यहां तो है मुनजिरून और वहां क्या है किताब मालूम, तो दोनों आयतें चूंकि बिल्कुल एक जैसी थी लिहाजा कोई तालिब इलम या कोई कोई शख्स जो नकल कर रहा था किताब को उसने बेख्याली में एक आयत की जगह दूसरी आयत लिख दी। तो अलबत्ता वल्लाहा किताब मालूम वहां पर वो मौजूद है और साहिब काफिया ने यह फरमाया है कि लहा किताब मालूम यह सिफत है करिया की और दरमियान में क्या आया है वो आया है। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ मौसूफ सिफत के दरमियान वो आ सकता है। देखिए भाई तर्जमा दोबारा وحكم المصنف رحمه الله في شرح المفصل في مباحث الاستثناء اور حکم لگایا ہے مصنف یعنی صاحب کافیہ نے شرح مفصل کے اندر استثناء کے مباحث میں کہ ان قوله تعالی کہ اللہ تعالی کا قول جو ہے ولھا منذرون ولھا منذرون فی قوله اللہ کے اس قول میں جو آ رہا ہے وما اهلکنا من قريه الا ولھا منذرون صفت لقريتين یہ صفت ہے کس کی قریہ کی توجہ ہے میں نے بتایا ولھا منذرون نہیں اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے ولھا کتاب معلوم ولھا کتاب معلوم کا کیا معنی وما اهلکنا من قريتين اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو الا ولھا کتاب معلوم مگر یہ کہ ان کا ایک مقررہ وقت تھا یاد رکھو کتاب کا ایک معنی مقررہ وقت کے بھی آتے ہیں किताब का एक माना मुकर्ररा वक्त के भी आते हैं वमा अहलकना मिन क़रियतिन और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया इल्ला वलहा किताब मालूम मगर यह कि उनका एक वक्त मुकर्ररा था। हर एक की मौत का एक वक्त मुकर्रर है भाई जो ना आगे हो सकता है और ना पीछे, तो वही अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं भाई। आगे देखिए कहते हैं फलविक तफा बि कौलिही फलविक तफा बि कौलिही ताबिउन यतवस्सतु। बात वही चल रही है कि मुसन्निफ ने क्या तारीफ की अलआत्फ ताबियु मकसूदुन बिन निस्बति मा मतबूईही, यह कहने के बजाय सिर्फ यह कह देते साहिब काफिया यतवस्सतु बैनहु व बैन मतबूईही अहदुल हुरूफ, सिर्फ यह तारीफ कर देते तो कहते हैं अगर सिर्फ यह तारीफ कर देते तो यह वलहा किताबु मालूम यह किसमें दाखिल हो जाता मातूफ में, हालांकि ये तो मातूफ नहीं है ये तो सिफत है। यही बयान कर रहे हैं कहते हैं फलविक तफा बि कौली ही, अगर साहिब काफिया इक्तफा कर लेते अपने इस कौल पर ताबिउन यतवस्सतु, तवज्जो है ताबिउन यतवस्सतु बैनहु व बैन मतबूईही अहदुल हुरूफ अलआशरा, बाकी लफ्जों को जिक्र नहीं किया बस इशारा कर दिया, ये दूसरा हिस्सा अगर तारीफ का जिक्र कर देते। कहते हैं फलविक तफा बि कौलिही ताबिउन यतवस्सतु, अगर साहिब काफिया अपने कौल ताबिउन यतवस्सतु पर इक्तफा कर लेते लद्दा खला फीही मिसलु हाजिहि सिफति, तो अलबत्ता दाखिल हो जाते इस तारीफ के अंदर इस जैसी सिफत, इस तारीफ में इस जैसी सिफत भी दाखिल हो जाती। और नीज और आगे फरमा रहे हैं साहिब जामी कहते हैं वन्नु किला अनिल मुसन्निफी अन्नहु काला फी अमालिल काफियती अमाली, भाई अमाली याद रखो ये इमला से है, इमला से इमला इमला इसको कहते हैं कि कोई शख्स कोई मजमून बोल रहा है और दूसरा लिख रहा हो, इसको कहते हैं इमला करवाना। एक शख्स एक मजमून जुबान से बोलता जा रहा है और दूसरा उसको लिखता जा रहा है, इसको क्या कहते हैं इमला। तो देखो साहिब काफिया दर्स देते थे, काफिया की शरब करते थे और तुलबा उसको लिखते थे भाई, तो साहिब काफिया बाकायदा दर्स बोलकर काफिया की शरह लिखवाते थे तुलबा को, तो उसको कहते हैं अमाली, काफिया की अमाली, यानी वो जो तकरीर जो इमला करवाई साहिब काफिया ने। तो काफिया की जो अमाली है यानी वो शरा जो साहिब काफिया जुबान से बोलते रहे और तलबा लिखते रहे, उसके अंदर भी साहिब काफिया ने ऐसी बात जिक्र की है कि मौसूफ सिफत के दरमियान क्या आ सकता है वो आ सकता है। कहते हैं वनुकिला अनिल मुसन्निफी अन्नहु काला फी अमालिल काफियती, और नकल किया गया है मुसन्निफ यानी साहिब काफिया से कि उन्होंने फरमाया अमाली काफिया के अंदर कि इन्नल आकिला फी मिस्ली जा अनी जैदुनिल आलिम वल आकिलु। देखो ये मिसाल जरा इस पे नजर रखो कि जा अनी जैदुनिल आलिमु वल आकिलु, अब ये अल आकिल इसका आतफ है अल आलिम पर, तवज्जो है, और अल आलिम जैद की सिफत तो अल आकिल भी जैद की सिफत, तो ये ताबिअ हुई जैद की, जैद मतबू और ये ताबिअ, और ये ताबिअ ऐसे माना पर दलालत कर रहा है जो किसके अंदर पाया जाता है वो आकिल कौन है زید ہے, تو لہذا یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صفت. اور موصوف صفت کے درمیان حرف عطف واو آ رہا ہے. کیا رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. صاحب کافیہ آگے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ صورت معطوف جیسی ہے, یہ حقیقت میں معطوف نہیں. یہ صورت کس جیسی ہے؟ معطوف جیسی ہے, یہ حقیقت میں معطوف نہیں, کیونکہ آپ اس واو کو گرا بھی سکتے ہیں. بھئی جاءنی زید العالم العاقل, کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو ایک چیز کی کتنی ہی صفتیں آپ لا سکتے ہیں بغیر واو کے. تو یہ واو بظاہر صورت معطوف جیسی ہے, لیکن حقیقت میں یہ معطوف, یہ والعاقل معطوف نہیں ہے. تو کہتے ہیں مصنف نے اپنی کافیہ کی امالی میں فرمایا ہے کہ ان العاقل فی مثلی جاءنی زید العالم والعاقل, کہ جو عاقل کا لفظ آیا ہے اس جیسی مثال میں, جاءنی زید العالم والعاقل, یہ جو عاقل کا لفظ آیا ہے, تابع, یہ ایسا تابع ہے, یتوسط بینہ و بین مطبوعہ احد الحروف العشرتی, کہ اس کے اور اس کے مطبوع کے درمیان حروف عشرہ میں سے کوئی ایک حرف موجود ہے. ولیس بعطف علی التحقیق, اور یہ عطف نہیں ہے تحقیق پر, تحقیق کے مطابق یہ عطف نہیں ہے. وانما ہوا باق علی ما کان علیہ فی الوصفیتی, اور یہ تو باقی ہے اسی چیز پر جس پر یہ تھا وصفیت میں, یعنی یہ اسی وصفیت کے حال پر باقی ہے. وانما ہوا باق علی ما کان علیہ, اور یہ باقی ہے اسی حالت پر جس پر یہ تھا, فی الوصفیتی, کس میں؟ وصفیت میں, یعنی جیسے یہ وصف تھا یہ اسی طرح واو کے آنے کے باوجود ابھی بھی وصف ہی ہے. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ, اور یہ باقی ہے اسی حالت پر جس حالت پر یہ تھا, فِي الْوَصْفِيَتِ, وصفیت میں. وَإِنَّمَا حَسُنَ دُخُولُ الْعَاطِفِ, بھئی جب یہ وصف ہے تو واو کیوں لائے, واو کے بغیر کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا حَسُنَ دُخُولُ الْعَاطِفِ, کہتے ہیں حرف عطف کا داخل کرنا اچھا ہوا, یہاں اس کا داخل کرنا اچھا ہے. لِنَوْعٍ مِنَ الشَّبَهِ بِالْمَعْطُوفِ, اس کو شبہ پڑھنا. بھائی شبہ کا کیا معنی؟ مشابہت. لِنَوْعٍ مِنَ الشَّبَهِ بِالْمَعْطُوفِ, اس لیے کیونکہ اس کی بھی ایک نوع کی, ایک قسم کی مشابہت ہے معطوف سے. اس صفت کی بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی مشابہت ہے معطوف سے. لما بینہما من التغایر, یعنی وہ جو ان کے درمیان ہے تغایر, یعنی جو مغایرت ہے. جیسے دیکھو معطوف غیر ہوتا ہے معطوف علیہ سے, جانی زید و عمر, زید معطوف علیہ اور عمر کیا ہے؟ معطوف, اور دونوں میں مغایرت ہے, زید کی ذات اور ہے عمر کی ذات اور ہے. تو جیسے معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے, اسی طرح موصوف اور صفت میں بھی مغایرت ہوتی ہے. موصوف ہوتا ہے مطبوع اور صفت ہوتی ہے تابع, موصوف ہوتا ہے اصل, صفت ہوتی ہے اس کی فرع. موصوف جو ہے وہ ذات ہے اور صفت اس کی, صفت اس کا وصف ہے, ایک معنی جو اسی کے اندر پایا جا رہا ہے. تو دونوں میں کیا ہے؟ مغایرت ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, موصوف اور ہے صفت اور ہے. ہاں صفت صادق اسی پر آتی ہے, یعنی اسی کے اندر پائی جاتی ہے. تو جیسے معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے سے مغایر ہوتے ہیں, اسی طرح موصوف اور صفت بھی ایک دوسرے کے مغایر. تو موصوف صفت کی مناسبت آ گئی معطوف اور معطوف علیہ سے, اور معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تو واو لاتے ہیں, تو اس لیے یہاں پر بھی واو لے آئے, اس لیے یہاں پر بھی واو لے آئے, کیونکہ موصوف صفت کی مشابہت ہے کس سے؟ معطوف اور معطوف علیہ سے. تو صرف اس مشابہت کی وجہ سے واو لائے ہیں, یہ حقیقت میں معطوف اور معطوف علیہ نہیں ہیں. یہ معنی ہے, کہتے ہیں وَإِنَّمَا حَسُنَ دُخُولُ الْعَاطِفِ, حرف عطف کا داخل کرنا اچھا ہے. لِنَوْعٍ مِنَ الشَّبَهِ بِالْمَعْطُوفِ, کس لیے؟ کیونکہ معطوف کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہے. لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّغَايُرِ, اس چیز کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان ہے, یعنی کہ تغایر, بھائی یعنی وہ مغایرت جو ہے. فَلَوْ حُدَّ الْعَطْفُ كَذَلِكَ, فَلَوْ حُدَّ الْعَطْفُ كَذَلِكَ, اگر عطف کی تعریف کی جاتی اسی طرح یہ توسطوں کے ساتھ کی جاتی, تو اگر فلو خود دلعت ہو کزالی کا, اگر عطف کی تعریف اسی طرح کی جاتی, لدخل فیہ بعض الصفات, تو اس کے اندر بعض صفات بھی داخل ہو جاتی. مع انہ لیس بمعطوف, باوجود اس کے کہ وہ حقیقت میں معطوف نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. وقال بعضهم, اب یہاں بعض اور نحویوں کا قول بھی ذکر کریں گے. بعض اور نحوی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی صفات کے درمیان واو آ جائے تو ان کو معطوف اور معطوف علیہ نہ قرار دینا, اور باقی جگہ حرف عطف آ جائے تو ان کو معطوف اور معطوف علیہ قرار دینا. ये कहते हैं ये एक इसकी जरूरत नहीं है, इनको भी क्या करार देना चाहिए, मातूफ और मातूफ अलैह करार देना चाहिए। कहते हैं वकाल बाज़हुम, और बाज नहवी हजरात फरमाते हैं फी ही नजरुन, इस कौल में नजर है, लिअन्न अल-हुरूफ अल-मुतवस्सिता बैनहा आतिफतुन, आतिफ हर्फ अतफ को कहते हैं, आतिफ अतफ करने वाला, तवज्जो से सुनिए भाई तर्जमा, लिअन्न अल-हुरूफ अल-मुतवस्सिता बैनहा, इसलिए क्योंकि वो हुरूफ जो इन सिफात के दरमियान आए हैं, आतिफतुन, वो कौन से हुरूफ हैं, हुरूफ अतफ हैं, लिदलालतिहा फीहा अला मा तदुल्लु अलैहि फी गैरिहा, इस वजह से कि ये हुरूफ दलालत कर रहे हैं इन सिफात के बीच में भी, अलामा उसी माना पर, तदुल्लु अलैहि फी गैरिहा, जिस माना पर वो इनके अलावा में दलालत करते हैं। ये जो सिफतों के दरमियान हर्फ अतफ आए हैं, ये सिफतों के दरमियान भी उसी माना पर दलालत कर रहे हैं जब उस गैर सिफत के बीच में आते हैं, जानी जैदुन व अमरुन, जैद और अमर ये तो मौसूफ सिफत नहीं है, इनके दरमियान वह आया, वो किस चीज का फायदा दे रहा है, जमा का, मालूम हुआ दोनों आने में जमा है, जैद भी आया है और अमर भी आया है, तो सिफतों के दरमियान भी जब वाव आए वो किस चीज का फायदा देता है, जमा का, कि मातूफ भी सिफत है और मातूफुन अलैह भी सिफत है, तो फिर इनको आतिफा करार न देना ये सही नहीं। फिर देखिए तर्जमा, कहते हैं लिअन्न अल-हुरूफ अल-मुतवस्सिता बैनहा आतिफतुन, इसलिए क्योंकि इन सिफात के दरमियान जो हुरूफ बीच में आए हैं वो हुरूफ आतिफा हैं, लिदलालतिहा फीहा अला मा तदुल्लु अलैहि फी गैरिहा, इसलिए क्योंकि ये हुरूफ आतिफा दलालत करते हैं इन सिफात के अंदर भी, अला मा उसी माना पर, तदुल्लु अलैहि फी गैरिहा, जिस पर वो गैर के अंदर दलालत करते हैं, भाई वो कौन सा माना है जिस पर दलालत करते हैं, मिन के साथ बयान है, मिनल जम्अ व तरतीब व गैर ज़ालिक, यानी जमा तरतीब वगैरह का, जमा वो जमा का फायदा देता है, फा तरतीब का फायदा देती है, सुम्मा तराखी का फायदा देता है, तो ये सारे माना का फायदा जब वो सिफात में भी देते हैं और गैरों में भी देते हैं, तो सिफात के अंदर सिफात को मातूफ करार न देना और गैर को मातूफ करार देना ये एक अमरे बईद का इर्तिकाब किया जा रहा है, दोनों का हुक्म एक होना चाहिए। तो कहते हैं मिनल जम व तरतीब वगैर ज़ालिक, यानी कि जमा तरतीब वगैरह के माना का जो फायदा देते हैं, फफी जालिहा गैर आतिफतिन फिस सिफाती, बस इन हुरूफ आतिफा को गैर आतिफा करार देना सिफात में, वह आतिफतन फी गैरिहा, और गैर सिफात में इन हुरूफ व आतिफा करार देना, इर्तिकाब अमरिन बईदिन, ये एक अमरे बईद का इर्तिकाब है, एक ये दूर के अमर का क्या किया जा रहा है, इर्तिकाब किया जा रहा है, मिन गैरी जरूरतिन दाइयतिन इलैही, बगैर किसी ऐसी जरूरत के, दाइयतिन इलैही जो इसकी तरफ दावत दे रही हो, यानी ऐसी जरूरत जो इसकी तरफ दाई हो, इसकी तरफ ले जाने वाली हो, हालांकि यहां कोई ऐसी जरूरत नहीं, भाई यहां कोई जरूरी होता, कोई जरूरत होती उसकी वजह से तो आप इस जानी जैदुन आलिमू वल आखिलू, आप फिर इस वाव को आतिफा करार ना देते, तो यहां वाव को आप आतिफा करार नहीं दे रहे और दूसरी जगह वाव को आतिफा करार देते हैं, तो ये एक अमरे बईद का इर्तिकाब है, बगैर किसी ऐसी जरूरत के जो इसकी तरफ दावत दे रही हो, बगैर किसी वजह के। बात समझ में आ गई, एक जगह वाव को आतिफा बनाना और दूसरी जगह आतिफा न बनाना, यह एक अमरे बईद का इर्तिकाब है जिसकी जरूरत नहीं, लिहाजा सबको आतिफा करार देना चाहिए। तो कहते हैं फफी जालिहा गैर आतिफतिन फिस सिफाती, तो इन हुरूफ अतफ को गैर आतिफा करार देना सिफात में, व आतिफतन फी गैरिहा, और इन हुरूफ अतफ को आतिफा करार देना गैर सिफात में, इर्तिकाब अमरिन बईदिन, ये एक दूर के अमर का इर्तिकाब है, ये कमरे बईद का इर्तिकाब किया जा रहा है, जाहिर तो यही है, इसको हर जगह आतफ के लिए होना चाहिए, तो ये एक दूर के अमर का इर्तिकाब किया जा रहा है, मिन गैरी जरूरतिन दाइयतिन इलैही, बगैर किसी ऐसी जरूरत के जो इसकी तरफ दावत देने वाली हो। बात समझ में आ गए, तो बहरहाल आज आपने एक नई बात पढ़ी, साहिबे काफिया फरमाते हैं कि कभी कभार मौसूफ सिफत के दरमियान भी हर्फ अतफ आ जाता है, और अल्लामा ज़मख़शरी ने बताया ये वो ताकीदे लुसूक का फायदा देता है, ये वो किस चीज का फायदा देता है, ताकीदे लुसूक यानी ताकीदे इत्तिसाल का फायदा देता है, मौसूफ सिफत में इत्तिसाल होता है, सिफत ऐसे ही माना पर दलालत करती है जो मौसूफ के अंदर पाया जा रहा है, तो दोनों में इत्तेसाल है, तो ये वो उसमें ताकीद पैदा कर देता है। तो जैसे वो और मानी के लिए आता है, अतफ से निकल जाता है और मानी के लिए आता है, कभी वो हाल के लिए आता है, वाव हालिया कहते हैं उसको, और कभी कभार वो किस लिए आता है, मुसाहबत के लिए आता है, जानी जैदुन व आमरान, जानी जैदुन व आमरान, ये आमरान क्या है, मफूल माहू है, यहां ये वो बमाने माह के है, यह मुसाहबत के लिए है। तो बाज औकात वह अतफ से निकलकर और मानी भी अदा करता है, कभी वह हालिया बन जाता है, कभी वह इब्तिदाइया बन जाता है, कलाम के बिल्कुल शुरू में आ जाता है, वहां मातूफ आलय होता ही नहीं है तो उसको वह इब्तिदाइया कहते हैं, कभी वह मुसाहबत के लिए आता है जैसे मफूल माहू में है, और कभी कभार वह हालिया आता है जो हाल के ऊपर दाखिल होता है। तो जैसे वह अतफ से निकलकर और मानी के लिए आ जाता है, इसी तरह वह का ताकीद लसूक के लिए आना ये कोई अमरे बईद नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर सिफात के अंदर जो वाव आए वो ताकीद लसूक के लिए हो सकता है। और नीज जानी जैदुनिल आलिमो वल आकिलो, आप इस वाव को हजफ भी कर सकते हैं, जानी जैदुनिल आलिमो अल आकिलो, जानी जैदुनिल आलिमुल आकिलो, वाव को आप हजफ भी कर सकते हैं। हालांकि मातूफ के अंदर तो आप वो को हजफ नहीं कर सकते, जानी जैदुन व अमरुन, आप यहां वो को हजफ नहीं कर सकते। नीज एक और बात याद रखना, ये जो सिफात के अंदर आता है हुरूफ अतफ में से, सिफात के अंदर सिर्फ वो आएगा और कोई हर्फ अतफ नहीं आएगा, फा सुम्मा हत्ता वगैरह नहीं, तवज्जो है। तो ये सिफात के अंदर भी वो आता है लेकिन वो सिर्फ वो आएगा, बाकी फा सुम्मा वगैरह यहां नहीं आ सकते। तो ये वो ताकीद लसूख के लिए होगा। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम ये कि आज साहिब जामी ने आपको बतलाया कि वयतवस्सतु बैनहु व बैन हुरूफिही अहदुल हुरूफिल अशरती, ये जो है इसके तारीफ के जामे माने होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज्यादा वजाहत के लिए जिक्र कर दिया। और ये शर्त है मातूफ बहर्फ की कि वहां हर्फ आतफ का होना जरूरी है। और फिर बतलाया कि सिर्फ इसी के साथ तारीफ नहीं की, वयतवस्सतु बैनहु, माकबल में और भी तारीफ को हिस्सा मिलाया। वजह यह क्योंकि बाज़ाकात मौसूफ सिफत के दरमियान भी हर्फ अतफ आ जाता है, चुनांचे दो चीजों के दरमियान हर्फ अतफ आने का यह मतलब नहीं होता कि सानी का अव्वल पर अतफ हो रहा है, बल्कि बाज़ाकात यह वो और मानी के लिए भी आता है। जैसे वो हालिया है भाई, वो हालिया दो जुमलों के बीच में आता है, दूसरा जुमला हाल होता है, वो अतफ के लिए नहीं होता भाई। तो दो चीजों के दरमियान वाव का आना यह इस बात की अलामत नहीं है कि सानी का अव्वल पर आतफ किया जा रहा है। चुनाचे अलामा जमक्षरी भी फरमाते हैं कशाफ के अंदर कई जगह पर कि यह वाव मौसूफ सिफत के दरमियान, उन्होंने जिक्र किया है कि वाव मौसूफ सिफत के दरमियान आ जाता है ताकीद लुसूक के लिए, यानी उस इत्तेसाल में ताकीद पैदा करने के लिए। और साहिब काफिया ने इस बात को जिक्र किया है अपनी किताब अमाली के अंदर, अपनी जो काफिया की शरह है, जो इमला करवाई उन्होंने, वो काफिया की जो अमाली है उसमें भी वो जिक्र करते हैं कि जानी जैदुनिल आलिमो वल आकिलो, ये अल आकिल कहते हैं सूरतन जो है मातूफ है, हकीकत में ये मातूफ नहीं, ये सिफत ही है भाई। इसको मातूफ वाली सूरत क्यों दी, वाव क्यों लाए, कहते हैं इसलिए क्योंकि इसकी मुनासबत है मातूफ के साथ। जैसे मातूफ और मातूफ अलह में मुगायरत होती है, दोनों एक दूसरे से गैर होते हैं, इसी तरह मौसूफ सिफत में भी मुगायरत होती है, मौसूफ और चीज है, सिफत और चीज है। हां अलबत्ता वो सिफत उसी मौसूफ के अंदर पाई जा रही है। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास वो जैद आया जो आलिम है, देखो जैद और जात है, आलिम होने का और माना है, लेकिन वो आलिम होने वाला माना इस वक्त किसमें पाया जा रहा है, जैद में, वरना माना दोनों का अलग अलग है। जैद जात पे दलालत कर रहा है और अल आलिम सिफत पर। तो जैसे मातूफ और मातूफ अलह में मुगायरत होती है, इसी तरह मौसूफ सिफत में भी मुगायरत होती है, इसलिए उनके दरमियान कभी वो ले आते हैं। और इस पर फिर बाज़ उलमा ने इश्काल भी किया कि ये जो हुरूफ आतिफा आते हैं सिफात के दरमियान, ये इनको गैर आतिफा करार देना ये एक अमरे बाईद का इर्तिकाब किया जा रहा है जिसकी कोई हाजत नहीं, लिहाजा इसको यहां भी आतिफा कहना चाहिए और इन सिफात को आपस में मातूफ और मातूफल कहना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।